Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 2, Text Number 10. आज संजय धृतराष्ट्र को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। कृपया इन पवित्र शब्दों का मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत स्वेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत स्वेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचन्। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत स्वेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। एक बार लास्ट। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत स्वेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। शब्दों का अर्थ देखिए। तम अर्थात उससे, उवाच कहा, यानी संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि उससे कहा। किससे? अर्जुन से। किसने कहा? ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने कहा अर्जुन से। कैसे कहा? आगे बोलना। प्रहसन, प्रहसन माना हंसते हुए। उसने हंसते हुए, ऋषिकेश ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, इव यानी मानो भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। और कहां खड़े होके कहा? आगे बता रहे हैं, सेनयोर यानी सेनाओं के, उभयो दोनों, दोनों पक्षों के मध्य, सेंटर में, बीच में, विषीदंतम। और वो अर्जुन की कंडीशन क्या थी जब उन्होंने कहा? वो शोक मग्न थे, बहुत शोक में घिरे हुए थे। और क्या? इदम वच, ये शब्द कहे जो मैं अभी बता रहा हूँ, यानी कि अभी मैं जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ, वो सब उन्होंने कहे हैं। वो एज इट इज मैं उनकी शब्दों में आपको बताना वाला हूँ। इदम वच माना शब्द। अनुवाद देखिए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। यानी कि अब धृतराष्ट्र को संजय ये बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो इतना दुखी था और फिर भी कृष्ण उसको हंसते हुए ऐसा कह रहे हैं। इन पवित्र शब्दों एवं आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करने के लिए भी हमें कृपा की आवश्यकता है। तो हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति और बुद्धि से भौतिक कलमश और विचारों का परित्याग करके मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहकणरघुनाथन् पीतं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादस् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सूतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरु भयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। द्वितीय अध्याय सांख्य योग गीता का सार श्लोक प्रमाण दशवां श्लोक है। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचन। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोक मग्न अर्जुन कृष्ण अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही है। यानी कि कोई सामान्य व्यक्ति बात नहीं कर रहे हैं, बोलने वाले हैं ऋषिकेश और सुनने वाले हैं गुड़ाकेश। ऋषिकेश वो है जिन्होंने अपने सारे जीवों की इंद्रियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, उनकी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और उनके स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। और उनके मित्र हैं गुड़ाकेश जिन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। यानी कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिन्होंने निद्रा को अज्ञानता को वश में कर रखा है, वह गुड़ाकेश है। और इन दोनों के सेंटर में जो वार्ता चल रही है, मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। पहले तो दोनों इक्वल थे क्योंकि दोनों मित्र थे, किंतु उनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कब बना? सातवें श्लोक में, जब अर्जुन ने कहा था शिष्यस्ते हम श्यादिमाम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ और आपकी शरण में आया। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले पहले तो दोनों का पद एक जैसा था कि दोस्त थे, लेकिन अब एक गुरु बन गया और दूसरा उसका शिष्य बन गया। आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया। अब यहाँ पर कृष्ण के हंसने के बहुत सारे कारण बताए हैं, हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने के बाद हम उसको विस्तार से कहेंगे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उनके हंसने का एक कारण बता रहे हैं कि कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, मित्र, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि उपेक्षित है। यानी कि पहले तो वो मित्र था और भगवान क्योंकि हाईएस्ट जगह पर है, सबसे टॉप है, उनका स्थान जो है वो सबसे ऊंचा है, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं जिसके कारण वो आपके मित्र बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं, पुत्र बन जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं, यहाँ तक कि ड्राइवर भी बन जाते हैं। तो लेकिन अब उसी ड्राइवर को अर्जुन ने अपना गुरु बना दिया है, तो भगवान क्योंकि हर परिपूर्ण है, पूर्ण मदम पूर्णमिदम, जो भी उनको जो भी रोल करते ना भगवान वो पूर्ण रूप से करते हैं। तो अब भगवान क्योंकि गुरु बन गए हैं तो उनसे अपेक्षा यही है कि वो अब गुरु की भांति कार्य करने वाले हैं, और ऐसा करने से पहले जो एक्शन किया है, जो बता रहे हैं स्माइलिंग कहा कि वो हंस रहे हैं, तो उसके विषय में बता रहे कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। यानी कि अब और तो भले बातें नहीं भी सुनी होंगी दूसरों ने, क्योंकि गीता तो नहीं सुनी होगी, लेकिन जो एक्शन हुआ है, अब जो दिखाई दे रहा है वो तो सबने देखा होगा क्या हो रहा है। प्रहसन्निव भारत, हंस रहे हैं भगवान, हंस रहे हैं, कोई साधारण बात नहीं है। तो अब ये क्योंकि दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर हंस रहे हैं, तो डेफिनेटली सबने उनको देखा होगा, सारे लोग लाभान्वित हुए होंगे। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। यानी कि जो सुनने की इच्छा करता है वो अधिकारी है। कोई लोग बोलते हैं ना कि हम लोग है ना इस योग्य नहीं है कि हम भगवद गीता सुने, हमने अपराध किए हैं, मंदिर में भी नहीं जाते और लेक्चर भी नहीं सुनते हैं, बोलते हमारे इतने पुण्य कर्म उदय नहीं हुए। लेकिन ये अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। आप यहाँ पर देखो श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि चाहे आप किसी भी समाज या जाति के हो, भगवद गीता सुनने का आपको अधिकार है। भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है अपितु सबों के लिए है, और उससे सुनने के लिए शत्रु और मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। हर कोई सुन सकता है, इसमें किसी को कोई किसी के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम इस श्लोक के कुछ मुख्य शब्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें है ऋषिकेश, प्रहसन, भारत और विशीदंत। इसमें सबसे पहले वर्ड जो आया है वो है तमोवाच। तमोवाच का मतलब होता है उससे कहा, और आखिर का शब्द है वचह, इदम वचह, यह शब्द का। अब एक बार कह दिया तमोवाच तो इतना काफी था ना, और लेकिन फिर वापस से बोला इदम वचह, यह शब्द का। यानी कि यहाँ पर दो दफा यही बात कही गई है कि ऐसा बोला है कृष्ण ने, ऐसे कहा है, ऐसा कहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ वो निश्चित रूप से है ना, कृष्ण के शब्द हैं। मैं कृष्ण के शब्दों में बता रहा हूँ आपको, यथारूप बता रहा हूँ, इसमें ना मैं कुछ एडिशन कर रहा हूँ और ना ही कुछ निकाल रहा हूँ। वही जो कृष्ण ने कहा है एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हमें ये साबित होता है कि जैसे हमारे आचार्य इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे एज इट श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार किया कि इस पे हमें हमारे पास आता है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जैसे कि तैसी जिया आहे तिया। तो ये श्रीमद् भगवद गीता संजय ने धृतराष्ट्र को भी एज इट इज बताई जैसे भगवान ने कही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दो दफा बोला है कि देखो मैं वही बता रहा हूँ जो कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। अब यहाँ पर एक और शब्द उच्चारण हुआ है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड भारत। भारत का मतलब होता है भरत, भरत राजा, जिसके नाम से यह भारत शब्द पड़ा, भारत पूरा इस देश का नाम हुआ। अब यह भारत वो ऐसा राजा था, एक छत्र राजा था, यानी कि एक ही सबका, सारे जितने भी यहाँ पर कंट्रीज थे उनका एक ही राजा था एक समय में, जिनका नाम था भारत। और उन्होंने क्या किया था, समस्त जितने भी राज को अपने भाट को छोड़ के वो जंगल में चले गए थे तपस्या करने। यानी कि कितना एक ही सिक्का चलता था, एक ही राजा का नाम चलता था, कितना उनका ऐश्वर्य होगा, कितना उनका वैभव होगा, वो सारे का सारा त्याग के वो चले गए थे कहाँ पर, वन में तपस्या करने के लिए। तो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं भारत, संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र का क्या मतलब होता है, धृति का मतलब होता है संकल्प, दृढ़ संकल्प के पकड़ के रखना, बहुत ज्यादा तेज पकड़ना, उसको छोड़ना नहीं, किसको, राष्ट्र को। यानी कि जिस दुर्बुद्धि की ऐसी बुद्धि है कि वो राष्ट्र को इतना तेज पकड़ लेता है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसका नाम होता है धृतराष्ट्र। तो आज संजय उसको धृतराष्ट्र कहकर नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि उसे याद करा रहे हैं कि आप उसी भरत के कुल से के वंशज हो, जिन्होंने अपने इतने महान राज्य को क्षण में त्याग दिया, इतने विरक्त आपके पूर्वजन हैं, और आप जो है वो ऐसा कर रहे हो राज के लिए, इतना आपको लोभ है, आपको शिक्षा लेनी चाहिए अपने पूर्वजों से कि उन्होंने देखो कितना फटाफट राज का त्याग कर लिया, और एक आप हो कि राज के लोभ में कितना अधर्म करने के लिए तुले हुए हो कि अपने बेटों का इतना अधर्म करने में भी उनका साथ दे रहे हो। यहाँ पर भरत, भारत जो है वो एक दूसरे भरत को भी याद कराता है जो कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। कहा जाता है कि ये राजा भरत इतने महान योद्धा थे कि जब वो बचपन में खेलते थे ना, जैसे हमारे बच्चे खेलते हैं तो उन्हें भी टॉयज चाहिए होते हैं जिसमें घोड़ा होता है, हाथी होता है, शेर होता है, तो वो खेलने के लिए उन्हें भी यही एनिमल्स चाहिए होते थे, लेकिन रियल के असली शेर के साथ वो खेलते थे, असली हाथी के साथ खेलते थे। मतलब इतने बड़े योद्धा थे कि बचपन में खेला करते थे इनके खून खुआर जानवरों के साथ, और उन्होंने भी समय आते, इतना बड़ा उनका राज्य था और समय आया और उन्होंने सारा का सारा राज्य त्याग कर और वन में जाकर तपस्या करना शुरू कर। ये सब ऋषि, राज्य ऋषि कहलाते थे, हालांकि राजा थे लेकिन कोई आसक्ति नहीं थी राज्य के अंदर। और आज संजय धृतराष्ट्र को याद करा रहे हैं कि ये भी राजा हैं और उन्हें कोई आसक्ति नहीं है अपने राज्य में, और एक तुम हो कि तुम इतने छोटे राज्य के लिए इतना बड़ा अधर्म करने के लिए तुले हुए हो। इस भारत शब्द से एक तीसरे भरत को भी याद किया जा सकता है, जिसकी तरफ संजय याद कराते हुए बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, हे भारत, और वो वैराग्य मूर्ति भरत है, त्रेता युग में श्री राम के अनुज भरत। वास्तव में उस समय भरत ने वैराग्य का जो प्रदर्शन किया था, ऐसा प्रदर्शन आज तक कहीं इतिहास में नहीं मिलता। उनकी माता ने ये योजना की थी। यहाँ पर देखो प्लानिंग की बात आती है कि हमारी प्लानिंग में और भगवान की प्लानिंग में कितना अंतर है। महाराजा दशरथ ने यह प्लानिंग की थी कल सुबह राम का राज्याभिषेक किया जाएगा, राम को राजा बनाया जाएगा। कंप्लीट तैयारियां हो गई थी और राम के राज्याभिषेक की तैयारी एकदम कंप्लीट हो गई थी कि अचानक से केकई ने एक दूसरी योजना की, यानी कि उन्होंने दूसरी प्लानिंग की कि राम को भेज दिया जाएगा वनवास में और राज्य मिलेगा भरत को। ये प्लानिंग चल रही है, सब सक्षम है और अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए उनके पास पावर है। और केकई ने क्या प्लानिंग की थी कि राम को वनवास और मेरे पुत्र भरत को राज्य मिलेगा। और समय बीता, हमने देखा कि राम तो चले गए वनवास में। अब दशरथ महाराज की यह प्लानिंग थी कि राम को राज मिले, लेकिन राम तो छोड़ गए, त्याग करके चले गए संपूर्ण राज्य को, जो माँ के एक पिताजी के आदेश को और माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए फौरन चले गए। अब जब भरत आए तो भरत की माँ का तो ये प्लानिंग थी ना कि वो राज्य पर बैठेंगे, लेकिन वो भी इस राज्य को स्वीकार नहीं किए और भरत ने भी राज नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो राज किसने किया था? 14 साल तक राज किया श्री राम की पादुकाओं ने, यानी कि वो राज सिंहासन पर बैठा कौन था? श्री राम की पादुकाएं। किसी ने सोचा नहीं, ये प्लानिंग जो है हम करते हैं कि हम हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ये कभी भी होने वाला नहीं है। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने प्रेजेंट को देखना चाहिए कि कैसे मैं, हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि हे कृष्ण सिर्फ मुझे इतना बता दो, हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर। ये एक जीव का केवल एक ही कर्तव्य है कि वो कैसे अपने भगवान को प्रसन्न कर सके। और भगवान से यदि कोई प्रार्थना करनी है तो हमें सदैव ये सोचना है कि हम कैसे इस प्रेजेंट मोमेंट में भगवान की सेवा करें, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग तो कभी पूरी होने वाली। बहरहाल हम तो यहाँ पर भारत शब्द पे यह व्याख्या कर रहे हैं, और भारत यानी भरत, वो भरत जिसने जिसको कोई भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि राम चला गया था, महाराजा दशरथ जो है वो भी उनका भी देहांत हो गया था, वो राज्य कर सकते थे, लेकिन राजगद्दी पर कोई बैठा हुआ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी राज्य को स्वीकार नहीं किया और राज्य किया श्री राम जी की पादुकाओं ने। तो इतना मतलब इतना वैराग्य जिन भरत के अंदर, और आज आप भी भरत हो, भारत कहकर पुकारा और बोला, आपके अंदर इतनी आसक्ति, इतना लोग कंपेयर करके देखो उन भरत के साथ अपने आप को, तो शर्म आएगी आपको। तो इसलिए उनको भारत कहकर पुकारा है। आगे संजय कह रहे हैं, सेनयोर उभयोर मध्य, यानी दोनों सेनाओं के मध्य में। अब ये अर्जुन, ये संजय धृतराष्ट्र को क्यों बता रहे हैं कि दोनों सेनाओं के सेंटर में खड़े? क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा था, क्या पूछा था? 1.1 में धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में एकत्रित होने के बाद, इच्छा तो उनकी युद्ध की थी, लेकिन वहां पर एकत्रित होने के बाद उन्होंने क्या किया? तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, सेनायोर उभयोर मध्य, कि सेना के बीच में खड़े होकर प्रहसन्निव भारत, ऋषिकेश ने ऐसा कहा, तुमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। तो यहाँ पर यह प्रश्न तो उठता है कि धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं पूछा था कि सेनाओं के बीच में खड़े होकर कृष्ण क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं पूछा था ना कि कृष्ण ने क्या किया। उसने तो खाली सिंपली यही पूछा था कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। और धृतराष्ट्र के पुत्र के विषय में संजय ने पहले ही बता दिया कि तुम्हारा जो कुबुद्धि पुत्र है वो अपने गुरु के पास गया और ये यह शब्द कहे कि ऐसा हो रहा है, देखो दोनों सेनाओं की व्यूह रचना को देखो। और तो कौरव के पुत्रों में से सिर्फ दुर्योधन के विषय में बताया, वो किसी के भी विषय में कौरव, तो यहाँ पर हमें पता है धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, उसने बोला मेरे पुत्रों को। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र लड़ाई कर रहे थे, उनमें से सबके बारे में उसको बताना चाहिए था ना कि ये तुम्हारा बेटा ये कर रहा था, ये तुम्हारा बेटा ये वाला ये कर रहा था, 19 नंबर का बेटा ये कर रहा था, 50 नंबर का बेटा ये कर रहा था, 70 नंबर का बेटा ऐसे ऐसे नहीं बताया। खाली बोला दुर्योधन जो तुम्हारा सबसे ज्यादा कुबुद्धि पुत्र था, जिसकी वजह से ये सारा कांड हो रहा था, जिसकी वजह से ये सारा दुर्भाग्य उदय हो रहा है तुम्हारे खानदान का, वो दुर्बुद्धि दुर्योधन क्या कर रहा था, क्योंकि बाकी सब तो उसके पीछे पीछे चलने वाले हैं, जो जो करें या ना करें, यानी कि उसके बारे में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सुनाना जितना कि दुर्योधन के बारे में सुनाना है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन के विषय में बताया। उसके बाद धृतराष्ट्र का दूसरा प्रश्न क्या था, पांडव के पुत्रों ने क्या किया, पांडव भी तो 5 थे, उनमें से किसी के विषय में भी उनको बताना चाहिए था, सारे पांडवों के विषय में बताना चाहिए था कि युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे थे, भीम क्या कर रहा था, नकुल सहदेव, लेकिन सबके विषय में नहीं बताया, खाली अर्जुन के विषय में कहा कि अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, और वहां पर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण रख दिया और कह दिया नयोत्स्य इति गोविंदम। यहाँ पर वार्ता खत्म, अर्जुन चुप करके बैठ गए, अब तो बस हो गया ना, अब जो क्वेश्चन था वो उसका तो रिप्लाई यहाँ तक खत्म हो गया। अब ये कब पूछा धृतराष्ट्र ने कि कृष्ण ने फिर क्या कहा, ऐसा नहीं कहा, लेकिन फिर भी संजय बता रहे हैं तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। हे भारत, उसके बाद ऋषिकेश ने ऐसा कहा, यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो संजय क्यों बता रहे हैं, हालांकि धृतराष्ट्र ने नहीं पूछा, लेकिन फिर भी वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह ही एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। उसे पता है कि यहाँ संसार में सारे लोग माया से ग्रस्त हैं, वो मुझसे भगवान के विषय में नहीं पूछेंगे कृष्ण के विषय में, लेकिन जो वो पूछेंगे उसके बीच में मैं कैसे कृष्ण को समेट कर, कृष्ण को लपेट कर मैं दे दूंगा और वो कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। इसी तरह से श्रील रूपा जी जब भी बात करते थे, कोई भी मटेरियल जो लोग होते थे उनके साथ जब बात करते थे तो ऐसे बात करते थे, शुरू शुरू में उनकी बात सुनते थे, क्योंकि उनको आइडिया था कि शुरू में वो मेरी बात सुनने वाले नहीं है। तो जैसे अगर जैसे कार रेसिंग वाले किसी के साथ एक बार क्या हुआ, श्रील रूपा एक व्यक्ति से मिले जिनका जो कार रेसिंग में हिस्सा लेते थे, तो उन्होंने श्रील रूपा के साथ बातें की काफी टाइम, और श्रील रूपा जी सुन रहे थे और बात भी उसी विषय में कर रहे थे कि हाँ आपने किस किस टाइप की गाड़ियों में ना राइड किया है और कैसे कैसे ना आप गाड़ी, कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा कंफर्ट है और किस गाड़ी में आपने ना, सारी गाड़ियों के विषय में गाड़ी। तो उसको तो इतना अच्छा लग रहा था कि स्वामी जी तो कब से मेरी पसंद की बात कर रहे हैं, उनको गाड़ियों में और मेरे बारे में सुनने का कितना अच्छा लग रहा है, कंटिन्यूस बता रहे हाँ ये गाड़ी में मैंने किया, ये गाड़ी में मैंने ड्राइव किया, इसमें रेस जीती, इसमें। तो फिर आखिर में श्रील रूपा जी बोले कि अच्छा आप इतनी सारी गाड़ियों में आपने रेसिंग की, तो क्या इन सारी गाड़ियों में घूमने से कभी एक्सीडेंट हुआ? यहाँ पर वो बोला हाँ एक्सीडेंट तो होता है, बहुत बार ही होता है। तो बोला अच्छा एक्सीडेंट भी होता है, फिर एक्सीडेंट में कभी किसी की मृत्यु होते हुए देखी आपने? बोला हाँ मृत्यु भी बहुत होती। तो बोला व्हाट यू नो अबाउट डेथ, डेथ के विषय में आप क्या जानते हो? तो बोला डेथ के विषय में क्या, डेथ हुई और खत्म, मर गया बंदा। तो बोला नहीं खत्म नहीं, वहां से तो स्टार्ट होगा। तो अब श्री प्रभुपाद ने वहां पकड़ लिया उस बात को कि भाई अब मेरी बात थी, मेरी बारी है अभी। श्रील प्रभुपाद अब वहां से शुरू होंगे, श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। तो पहले इसी तरह से भगवान भी पहले कंटिन्यूस उसको सुन रहे थे अर्जुन क्या बोल रहा था, अर्जुन ने क्या क्या तर्क दिए, शास्त्रों के तर्क दिए कि धर्म अगर खत्म हो जाएगा, अधर्म जोर हो जाएगा, कुल की स्त्रियां पवित्र हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, और इससे तो सारे पुरखे जो है वो नरक में चले जाएंगे क्योंकि पिंडोदक दान इत्यादि नहीं होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी, और बोला ये तो मैं अपनी तरफ से बता भी नहीं रहा हूँ, ये तो शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ। तो कृष्ण जो है वो हंस रहे हैं अर्जुन की इस बातों पर कि हाँ ठीक है बताओ किसे बता रहे हो तुम। उसी तरह एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास आया और श्रील प्रभुपाद जी की लिखी हुई भगवद गीता जो कमेंट्री हम पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की श्रीमद भगवद गीता जो यथारूप एज इट इज, उसके विषय में श्रील प्रभुपाद को दोष दर्शन कराने लगे। बोले श्रील प्रभुपाद जी आपने ना जो भी ये श्रीमद भगवद गीता में जो श्लोक हैं बिल्कुल जिनमें कृष्ण नाम ही नहीं है, जैसे छठा अध्याय ले लीजिए ध्यान योग, जिसमें खाली ध्यान कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे कैसे ध्यान करना है, कैसे नासिका से सांस लेनी है, कैसे वो जगह पे बैठना है और अपना पूरा केंद्रित करना है ऊपर प्राणों को, ये सब है। और आप उसमें बता रहे हो कि कृष्ण भक्ति, इसमें कृष्ण नाम कहाँ लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है कि कृष्ण की भक्ति से ध्यान होता है? और आगे अच्छा श्री प्रभुपाद जी बोला अच्छा ऐसे लिखा और कुछ देखा आपने? तो बोला हाँ चैप्टर नंबर 14 सिर्फ सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण पे है ना पूरा। अब सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण में कृष्ण आया किधर से, कृष्ण नाम की तो कोई बात ही नहीं है। उसी तरह से अथर्वा अध्याय उसमें भी कोई कृष्ण है ही नहीं, आप हर श्लोक को खत्म कर रहे हो कृष्ण की भक्ति पर कि कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण और ये है ना आपका गुण है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा अगर आप भगवान की भक्ति करोगे, कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति, हर किधर कृष्ण भक्ति को कैसे घुसेड़ देते हो आप ऐसे कैसे करते हो? श्री प्रभुपाद ने बोला अच्छा और किधर है ऐसा? तो बोला हाँ वो अध्याय में है, तीसरे अध्याय में भी ये सब कुछ भी नहीं, पांचवें अध्याय में कुछ नहीं लिखा हुआ, उधर भी आपने बोला कृष्ण भक्ति। तो ऐसे करते 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 उसने सारी भगवद गीता में जहां जहां भगवान श्री प्रभुपाद ने, बल्कि जहां जहां क्या हर जगह श्री प्रभुपाद ने कहा लिखा कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के नाम का कीर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र का कीर्तन करेंगे तो हमारे समस्त अपराध क्षय हो जाएंगे। तो वो बोल रहा था ये जिधर फिट नहीं आ रहा उधर आपने कैसे फिट किया ऐसे? तो श्री प्रभुपाद जी हाँ वाकई में आप अच्छा और कहाँ लिखा है ऐसे ऐसे और कहाँ और कहाँ, ऐसे करते करते समय समाप्त हो गया और श्रील प्रभुपाद ने कोई भी अपने डिफेंस में बात नहीं की, कोई भी आर्ग्यू नहीं दिए कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, बस पूरा का पूरा उसका सुन लिया और वो सुना के चला भी गया। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य भी बैठे हुए थे, क्योंकि जब भी वार्ता होती थी कोई नया पर्सन आता था तो कुछ शिष्य भी अंदर होते थे रूम में, ताकि वो देखना चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद जी अलग अलग लोगों के साथ किस तरह डील करते हैं। तो इतना पहले तो उन्होंने इतना आश्चर्य उत्पन्न किया और श्रील प्रभुपाद जी को बोला कि वैसे तो जब भी कोई आता है मैदान में आप तो उसको पहले ही बात में पछाड़ देते हो, ये आज आपने कुछ बोला ही नहीं, उसको ही खाली बोलने दिया, आपने कोई डिफेंस नहीं किया, खाली वो बोलता रहा आपने कुछ भी नहीं बोला। तो श्री प्रभुपाद ने बोला हाँ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दूसरे लोग को कृष्ण के विषय में बात नहीं बोलना आती थी तो मैं जैसे तैसे करके उनको कृष्ण के विषय में बताता, ये बोल रहा था कंटिन्यूस बता रहा था यहाँ कृष्ण है वहाँ कृष्ण है यहाँ कृष्ण है वहाँ कृष्ण है। तो कितनी बार उसने कृष्ण बोला, कृष्ण 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 हर जगह पर कृष्ण है, हर जगह पर कृष्ण है, हर जगह पर महामंत्र है, तो इसका उद्धार हो गया समझो। अब इसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदय होने वाला है, अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो उधर करने की जरूरत होती है जिधर कृष्ण प्रेम नहीं होता है कृष्ण के विषय में, जो इसने मेरी भगवद गीता पढ़ ली है पूरी समझ ली है कि कहाँ कहाँ कृष्ण रखा है मैंने, उसको पता चल गया हर जगह पे कृष्ण है, अब पता चल गया है जैसे जैसे उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती जाएगी वो खुद को डाइवर्ट हो जाएगा, पढ़ना जरूरी है। तो इसी तरह से हम भी श्रीमद् भगवद गीता, हमारे अंदर भी कोई भगवान के प्रति भाव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते जाएंगे और सुनते जाएंगे, इतना मधुर रस श्री प्रभुपाद ने इस श्रीमद् भगवद गीता में रखा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे भाग्य का सूर्य भी उदय होगा और हम भी श्रीमद् भगवद गीता को समझने के योग्य बन सकेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, एक उनका कोटेशन है, श्रील प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं, ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड दे सीट फॉर अ ग्रेट पर्पस, यानी कि जो ग्रेट डिवोटीज हैं, जो अच्छे बहुत अच्छे भक्त हैं, वो लोग को सीट भी करते हैं तो भी ग्रेट पर्पस के लिए। तो उसी तरह से संजय धृतराष्ट्र ने नहीं पूछा था कि कहाँ लिख कहा, मतलब कृष्ण ने क्या किया, लेकिन फिर भी जो भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे ये ना कि ना प्रकार आपको कृष्ण के विषय में बताते हैं ताकि आपका उद्धार हो सके। तो संजय आज धृतराष्ट्र को कृष्ण के विषय में बताना शुरू कर रहे हैं और पहले ही कहा विषीदंतम, विषीदंतम का क्या मतलब होता है, शोक मग्न, अब बहुत ज्यादा दुखी था कौन, अर्जुन, अर्जुन बहुत ज्यादा दुखी था और खड़ा कहाँ था, सेना यौरो भय और मध्य, सेना के सेंटर में खड़ा था। सेना के सेंटर में खड़े होकर वो दुखी था, और वहीं सेना के सेंटर में और कौन खड़ा था? कृष्ण खड़ा था। और वो क्या क्या कर रहा था? स्माइल कर रहा था, प्रहसन्न। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि देखो जीव में और भगवान में क्या अंतर है। जीव जो होता है वो समय के साथ दुखी हो जाता है, जो भी समय की जो घटना आती है, सिचुएशन जो होती है उसके साथ दुखी और सुखी हो जाता है। लेकिन भगवान जो है वो हर समय हंसते हैं, चाहे कोई भी सामने कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, भगवान को वो दुखी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इस प्रहसन्निव भारत यानी विषि दंतम से ये संजय जो है वो धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि जब इतनी दुखमयी अवस्था भी थी तो आप ये ना समझना कि अर्जुन को दुखी देखकर भगवान का भी मुंह लटक गया होगा कि हाँ यार अर्जुन क्या कर सकते हैं, अब लड़ाई करनी पड़ेगी। अब मतलब दुखी हो गया, उसको कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, प्रहसन्निव हंसते हुए कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता ही है कि अब उससे पहले तो चलो कृष्णा और अब गुरु बन गए, लेकिन इससे पहले क्या थे? दोस्त थे। अब कभी ऐसा हो कि हमारे साथ हमारा कोई मित्र हो और वो इतनी दुखमयी अवस्था में, अर्जुन रो रहा था, उसने कहा था ऐसा कि मैं अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ, मेरा सर चकरा रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिरा जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं अपने आप को मजीद संतुलित नहीं रख पा रहा हूँ, इतना दुखी हो गया कि धनुष बाण साइड में रख कर फेंक कर बैठ गया और रोने लग गया। और भगवान क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। तो हमारा कोई मित्र अगर हमारे सामने कोई ऐसी दशा में हो तो क्या हम हंसेंगे? हंसेंगे नहीं, बल्कि और भी रोने जैसा मुंह बनाएंगे, हंसने वाला तो नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि हमारे दोस्त को बुरा लगेगा। लेकिन भगवान फिर भी हंस रहे हैं। पता हंसते कब है? वैसे तो नहीं हंसते, लेकिन अगर हमारा मित्र जो है वो शोक कर रहा हो किसी ऐसी चीज के लिए जो बिल्कुल शोक करने के लिए योग्य नहीं हो, जैसे अगर जैसे ना आप पहले मित्र थे तब नहीं संजय ने बताया कि हंस रहा था, लेकिन अब भी क्योंकि शिष्य बन गए हैं और गुरु बना दिया कृष्ण को तो हंस रहे हैं। जैसे हम माँ बाप होते हैं बच्चों को, कभी अगर कोई बच्चा छोटा बच्चा अपने पिता के साथ फिंगर पकड़ के जा रहा है और रास्ते में उसके हाथ से एक कॉइन गिर जाता है, 1 रुपए का कॉइन गिर जाता है और वो खो जाता है तो रोने बैठ जाता है, मेरा कॉइन गिर गया, मेरा कॉइन गिर गया। लेकिन पिता फिर क्या बोलता है? वो स्माइल करता है, बोले इतनी छोटी सी बात के लिए रो रहे हो आप, इतना ज्यादा रो रहे हो, 1 कॉइन गिरा, चलो मैं आपको 5 कॉइन दे देता हूँ, ठीक है फिर चुप कर। तो मना जो चीज वैल्यूएबल नहीं होगी ना उसके लिए अगर कोई दुखी होता है तो फिर हम उसको स्माइल करके बोलते हैं कि ये चीज के लिए तुम दुखी हो रहे हो, ये तो इस योग्य नहीं कि इसके लिए दुखी हो जाए। इस तरह से अगर हम देखें कि समुद्र के किनारे पर बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो घर बनाते हैं, अच्छा सा घर बनाते हैं और उसमें बेडरूम बनाते हैं, बोले ये बेडरूम होगा, ये मेरा है ना प्ले ग्राउंड होगा, यहाँ पर मैं गार्डन होगा, झूले लगाऊंगा, ये किचन होगा, ये इतना अच्छा बनाते हैं घर, और किनारे पर उसके माँ बाप भी बैठे हुए होते हैं तो हंस रहे होते हैं कि देखो कितने छोटे बच्चे हैं, इतनी छोटी अभी इतनी मेहनत से घर बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी लहर आएगी और इनका पूरा घर टूट जाएगा। उस तरह से हम लोग भी अब भगवान हंस रहे हैं तो हमको हमारे भी लेना चाहिए कि जब हम लोग भी घर बनाते हैं अपने घर में, यहाँ पर प्लानिंग करते हैं, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, यहाँ पर एक घर होना चाहिए, एक उल्लासनगर में होना चाहिए, एक दूसरी जगह पे होना चाहिए, अच्छा बॉम्बे में भी होना चाहिए, ऐसे घर बनाते हैं और भगवान हंस रहे होते हैं कि कितने बेवकूफ हो, आज तुम इतना घर बनाने में बिजी हो, समय की एक आंधी आएगी और तुम्हारे सारे घर बिखर जाएंगे, तुमको ले जाए। तो मेन क्या है कि आप भगवान हमें ये बता रहे हैं कि हम कैसे अपने समय का सदुपयोग करें, किस तरह से इस समय में ऐसा कार्य करें कि हम फ्यूचर प्लानिंग जो वास्तविक फ्यूचर है आफ्टर डेथ उसको सही तरह से प्लान कर सके ताकि बाद में आकर हमें दुखी ना होना पड़े, अगर आना भी पड़े तो भी श्रीमान शुचिमताम गे है योगो भ्रष्टो भी जायते, आज इतनी भक्ति कर लें कि कल हम ऐसी जगह पर पैदा हो कि पहले से ही बादशाहत हो। पहले से ही बहुत ज्यादा अमीर हो, बादशाह हो, और आए और फटाफट से भक्ति करें निकल जाए, वरना आज जिस तरह से एक एक पैसे के लिए पूरा दिन थोड़े थोड़े पैसों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कल भी आज अगर यही रजोगुणी कार्य करते रहेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट जन्म भी यही करना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बताते हैं कि अगर भक्ति करके मरोगे ना, आधी भक्ति हो जाएगी, तो फिर आगे आपको मेहनत पैसों के लिए नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? श्रीमान शुचि मतांग ये है, योगो भ्रष्टो भी जायते। बहुत ही इज्जतदार और अमीर खानदान में पैदा हो जाओगे, जहां पर तुमको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन अपने लिए बनानी चाहिए। तो भगवान भी हंस रहे होते हैं कि आज भी मेहनत करेंगे घरों की तरह, भक्ति नहीं करेंगे, और कल भी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे लोग हैं सारे यहाँ पर। तो भगवान को हंसी आ रही है ये सोचकर। तो पहले भगवान हंस रहे हैं धृतराष्ट्र को शोक देने के लिए कि तुम ये मत सोचना कि अर्जुन के इन तर्कों से दुखी होकर कृष्ण भी अपना मुंह रोने जैसा बना रहे हैं। नहीं, वो हंस रहे हैं और वो अब ऐसा कहेंगे जिससे अर्जुन के समस्त दुख दूर हो जाएंगे। जब कृष्ण अभी बोल देना विषीदंतम इदम वचः, दुखी अर्जुन को ऐसे शब्द कहे, यानी कि जब वो शब्द कहेंगे तो दुख का निवारण हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो शब्द आया है प्रहसन्निव, यानी भगवान हंसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान हंस रहे हैं। वास्तव में जब कोई काम, साधारण से साधारण काम भी अगर कोई बहुत ही असाधारण व्यक्ति करता है, यानी कि कार्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना करने वाला। अब वही कार्य अगर हमारे जैसा कोई साधारण व्यक्ति करता है तो कोई पेपर न्यूज़पेपर में ना कोई इश्यू नहीं होगा, कोई मीडिया नहीं छापेगी कि आज है ना अभिजीत प्रभु हंसे थे, या सुबह सवेरे उठ के उन्होंने ना आंखें खोली थी या बंद की थी, इस तरह नहीं। जैसे भगवान के विषय, भगवान का हर कार्य जो है वो महत्वपूर्ण है, वो कुछ भी करते हैं तो महत्वपूर्ण है। जैसे श्रीमद् भागवतम के दशम सिकंद में पूतना वध के समय भगवान ने अपनी आंखें बंद की, और जब भगवान ने अपनी आंखें बंद की, सारे जितने भी टीकाकार हैं उन्होंने अलग अलग भाव दर्शाए कि भगवान ने क्यों आंखें बंद कर दिया। अब हमारे जैसा मूर्ख प्राणी तो कितनी दफा आंखें बंद करता है, खोलता है, कोई उससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं। इसी तरह से देखो, साधारण व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है, वो हंस रहा होता है, रो रहा होता है, इतना इम्पोर्टेंट। लेकिन आज दुखी है गुड़ाकेश विषीदंतम, जो अर्जुन जो है वो इतने दुख में है, और भगवान क्या है, हंस रहे हैं। तो अलग अलग आचार्यों ने बहुत सारी टीकाएं बताई कि अर्जुन, दुखी अर्जुन को देखकर कृष्ण क्यों हंस रहे थे। यानी पहले तो भगवान जो है वो अर्जुन की विचित्र, यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बताया है कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उसके मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। विचित्र शरणागति के पहले, आज तक तो उसको, पहले तो भगवान को दोस्त समझता था, लेकिन अभी क्या बोला, सेवेंथ श्लोक में बोला, यश्रेय स्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब कृष्ण, अभी मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, अब मेरे लिए जो भी बेहतर है वो बताओ, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वो आप मुझे बताओ, वो मैं करूंगा। ठीक है, पहले तो बोला आप मुझे बताओ वो मैं करूंगा, और आगे क्या बोला, नाइन में, श्लोक नंबर नाइन में बोला, नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूवः, कि पहले बोला मैं जो बोलोगे वो करूंगा, अभी यहाँ पर आके बोल रहे हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अरे बाबा, जब बोल दिया कि जो तुम बोलोगे वो करूंगा, फिर अपना डिसीजन सुनाने की क्या जरूरत है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो कृष्ण को हंसी आ गई कि तुम भले बोलो मैं लड़ाई करूंगा या नहीं करूंगा, मुझे पता है तुम क्या करोगे, क्योंकि अभी 45 मिनट के बाद तो कृष्ण को अर्जुन, यही अर्जुन कहेंगे कि 18.73 में क्या कहेंगे, नष्टो मोह से मृते लब्धा तत्प्रसादान माया चुत चितोसि स्थितोस्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अभी आप जो बोलोगे वो करूंगा, युद्ध बोलो तो युद्ध करूं, नहीं बोलो तो नहीं करूं। यानी कि यहाँ पर अर्जुन, अब कृष्ण तो जानते हैं, कृष्ण बताते हैं 7.26 में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कर्षण। मैं श्री भगवान हूँ और मैं सबके भूत भविष्य वर्तमान को जानता हूँ, तो भविष्य को भी जानते थे उसी टाइम पर। तो भगवान को हंसी आ गई कि अभी तो बोल रहा है नहीं लड़ाई करूंगा, लेकिन अभी 10-15 मिनट 45 मिनट के बाद बोलेगा कि मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ, तुम बोलो तो लड़ाई करूँ, तुम बोलो तो नहीं करूँ। इसलिए भगवान को हंसी आ गई। भगवान हंस रहे हैं, उसका नेक्स्ट कारण क्या है कि अर्जुन के तर्क को सुन करके। अर्जुन ने इतनी सारी बातें बताई शास्त्रानुगत के हमें पाप लगेगा अगर हम अपने गुरुजनों का वध करेंगे और ये सब पूजनीय है इनका वध करेंगे तो पाप लगेगा, शास्त्रों में कहा गया है, इस ये सब जो भी धर्म शास्त्र है उनमें बताया गया। तो ये सब शास्त्रों की बातें वो किसको बता रहे हैं, सुना किसको रहे? कृष्ण कह रहे हैं मैं सारे शास्त्रों का बाप तुम्हारे सामने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 15.15 में क्या कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम। समस्त वेदों का रचयिता, समस्त वेदों के द्वारा जानने वाला, समस्त वेदों को जानने वाला और समस्त वेदों के जानने का लक्ष्य एकमात्र कृष्ण है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम मुझे बता रहे हो, मुझे नहीं खबर क्या कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, किताबों में क्या लिखा हुआ है। मैंने इनकी रचना की है, मैं इनको जानने वाला हूँ, मैं इनको जनाने वाला हूँ और मैं ही इनके जानने का लक्ष्य हूँ, तो तुम मुझे बता रहे हो। तो ये सोचकर भगवान को हंसी आ रही है। आगे एक बहुत ही मुख्य कारण है भगवान के हंसने का, क्योंकि भगवान जब अभी इस द्वापर युग में आए तो फिर बहुत सारे लोग भगवान के शरणागति थे, लेकिन जो भी कौरव सेना में उस तरफ खड़े थे वो भगवान के शरणागति नहीं थे। यानी कि अब भगवान जानते थे कि जो अब उसमें भी कुछ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इत्यादि को पता था कृष्ण के विषय में, लेकिन बाकी ज्यादातर लोग क्या थे, वो भगवान के सरेंडर नहीं होना चाह रहे थे। अब भगवान सोच रहे हैं कि मेरे आने का क्या लाभ, मेरे होने का क्या लाभ अगर मेरे समक्ष आए हुए लोगों का उद्धार नहीं होता है। यानी कि मेरा दर्शन भी किया, जैसे दुर्योधन ने और दुशासन ने और उनके दूसरे इतने सारे भाई थे वो, और दूसरे जयद्रथ इत्यादि, उन सब भी उसी द्वापर युग में आए थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए थे। तो भगवान ये सोच रहे थे कि मैं आया हूँ और मेरे होने का क्या लाभ, जब मेरे सामने जो आए मैं उनको मुक्त ना कर सकूं, जब उनका उद्धार ना हो सके। तो भगवान ने बहुत कोशिश की, भगवान ने साम दाम दंड वेद हर तरीके से समझाया उनको, किसी तरह से उनको बताने की कोशिश की कि आप आ जाओ, सरेंडर कर दो। और अब बाद में यहाँ तक कह दिया कि आप 5 गांव दे दो, पूरा राज्य भी ना दो, 5 गांव दे दो अर्जुन वालों को, संधि के साथ रहो, मेरे मित्रों के साथ दोस्ती करो। यानी कि भगवान बताना इस तरह से चाहते थे कि यदि जो मेरे मित्र हैं अर्थात जो भक्त हैं उनके साथ आप मित्रता कर लोगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने साधु संघ से बिल्कुल मना कर दिया कि हम पांडवों के साथ मित्रता नहीं करेंगे, तो ऐसा है कि जब हम भक्तों के साथ मित्रता नहीं करते तो हमारा विनाश जो है वो अनिवार्य है, विनाश होना ही पड़ेगा। क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कौरवों ने, भगवान ने कोशिश की। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे नसीब में साधु संघ नहीं होता है, नसीब में साधु संघ होता है लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम इच्छा करेंगे तो साधु संघ हमें मिलेगा। अब इनको मिला, कौरवों को साधु संघ मिला था लेकिन वो चाहते नहीं, उन्होंने नहीं किया। तो भगवान ने क्या कहा कि अब मैं आ ही गया हूं तो किसी न किसी प्रकार इन सबका उद्धार कर दूं। तो यहाँ पर सब परेशान खड़े थे और शास्त्र कहता है कि भगवान की एक मुस्कान संसार के समस्त शोकों को दूर करने वाली है, समस्त चिंताओं को दूर करने वाली है। तो भगवान हंस रहे थे, और इसके बाद भी कहा जाता है महाभारत में अक्सर लिखा होता है कि जब भी अर्जुन के साथ कोई लड़ने के लिए आता था, लड़ने के लिए वहां से बहुत गुस्से से आता था, लेकिन जैसे ही भगवान को देखने था, क्योंकि अर्जुन से पहले उसको जाहिर सी बातें भगवान को देखना पड़ता था, तो भगवान की इतना हंसता हुआ कमल के जैसा है ना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो अचेत हो जाता था, मतलब उसका जो है ना लड़ाई का जो जोश होता था वो बिल्कुल खत्म हो जाता, स्तंभ हो जाता था, ऐसे ही देखता रहता था। अर्जुन सोचता अरे इसको क्या हो गया, अभी लड़ाई कर रहा था, अभी ये क्यों स्तंभित हो गया, स्तंभित मतलब खंभे की तरह खड़े हो जाना। और फिर भगवान को देख देता था, भगवान को देखते देखते अर्जुन अभी उसको और इतना आधा तो मर गया भगवान की मुस्कुराहट पे, बोलते ना तुम्हारी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, हम होश में आने ही वाले थे कि तुम फिर मुस्कुरा दिए। तो अभी वो उसके तो होश वहीं पर उड़ गए होते थे जो भगवान को देखता है, और फिर अर्जुन जैसे तीर चलाना शुरू कर देता तो उसका मर जाता था। कितना जबरदस्त उनका इनका एंड हुआ लाइफ का, भगवान ने कितना उनके ऊपर कृपा की कि ये तो ऐसी मृत्यु तो भक्त कितनी तपस्या के बाद हासिल करता है। कहता है कि आप उस समय हे गोविंद उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। ये तो मेरा है, और भी है ना इसमें, होंठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप हंसते हुए आना उस समय जब मेरी, तो ये कितना उनका लाभ हो रहा है जो शत्रु अर्जुन के साथ लड़ाई करने वाले डेफिनेटली भगवान के पास जाने वाले हैं, डेफिनेटली उनका उद्धार होने वाला है, क्योंकि मरते समय उन्होंने भगवान का हंसता हुआ चेहरा देख लिया। और इस तरह से अर्जुन को आसान हो जाता था लड़ाई करना, उसको थकावट ही महसूस नहीं, क्योंकि पहले से घायल हो गए थे होते थे भगवान की मुस्कुराहट को देखकर। और ऐसा श्री प्रभुपाद जी एक अपने लेक्चर में बताते हैं, अक्सर बताते हैं कि इस संसार में जितने भी फूल हैं, जब कोई फूल खिलता है तो इसका अर्थ ये है कि भगवान की मुस्कुराहट से वो खिला, यानी जब भगवान अपने गोलोक धाम में हंसते हैं तो उनको हंसता हुआ देखकर कोई भी फूल अगर खिलता है तो उसका कारण भगवान की हंसी है। तो यहाँ पर यह प्रश्न तो उठ ही सकता है कि अभी तो जब भी भगवान हंस रहे हैं तो सबके जीवन के चिराग जो है वो गुल होने वाले हैं, यानी कि सब मरने वाले हैं, तो खिलने की बात कहाँ से कह दी श्री प्रभुपाद ने। तो यहाँ पर तो सब जो जिसको हंसके हुए देखा भगवान ने और उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि अब सामने अर्जुन के सामने तो सारी कौरव सेना ही आएगी ना लड़ाई करने के लिए, पांडव सेना तो नहीं आएगी, और कौरव सेना का जो भी योद्धा आएगा बेचारे का जीवन समाप्त होने वाला है। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो हर कोई फूल खिलने वाला होता है, वो तो सारे फूल मुरझाने वाले, लेकिन इससे हम ये समझ सकते हैं कि उसके भौतिक जीवन का फूल तो मुरझाने वाला है, इसके भौतिक जीवन का जो पुष्प है जो ये शरीर है वो तो खत्म होने वाला है, लेकिन उसकी वास्तविक आध्यात्मिकता, उसका आत्म साक्षात्कार, उसका जो आध्यात्मिकता का जो फूल है वो खिलने वाला है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी का ये वाक्य बिल्कुल सत्य है कि ये भौतिक जीवन तो नष्ट होने ही वाला है, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का कमल खिलने वाला है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के हंसने से सारे फूल खिल उठते हैं। तो अर्जुन बहुत दुखी थे, रो रहे थे, और भगवान उसको हंसकर सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि जब भगवान हंसते हैं तो हमारे समस्त दुखों का नाश हो जाता है। तो यदि हम सबको भी अपना रोना बंद करना है तो अब से भगवान हंस रहे हैं और भगवान जो बोल रहे हैं उसको सुनने से जब अर्जुन का इतना बड़ा दुख का नाश हो गया तो हमारे भी छोटे छोटे दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। तो हमें भी भगवान, अगर हम अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं तो भगवान के शब्दों को, भगवान के हंसते हुए चेहरे पर अपनी दृष्टि टिकाए रखनी है, और भगवान के शब्दों को जो अभी वो बोलने वाले हैं, कल से स्टार्ट हो रही है वास्तव में भगवद गीता, उसको सुनेंगे तो हमारे भी समस्त जीवन के समस्त दुख रोग खत्म हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।